निरंधस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नम्ने गौरतिषे नमः। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदाले कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तदभक्ताय नमः। मैं सबसे पहले अपने शिष्य गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट हूँ विष्णुपाद शिष्य भक्ति प्रज्ञान के शोक गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में अनंत कोटि श्रद्धा पुष्पांजलि ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात सारे विश्व में थोड़े ही समय में सनातन धर्म का प्रचार करने वाले शुद्ध भक्ति का प्रचार करने वाले श्री श्री भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जिनको इस देश के लोग या विश्व के लोग प्रभुपाद के नाम से जानते हैं उनके चरणों में अपनी श्रद्धा पुष्पांजलि ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात वैष्णवगण यहाँ के हिंदू सनातन धर्म मंदिर के रामलीला मंदिर के सभापति सदस्यगण उपस्थित सज्जन वृंद माताएं और बहनें सबको मैं यथा योग्य अपना अभिनंदन ज्ञापन करता हूँ। आप लोग सुन चुके हैं कि मैं भारतवर्ष से पवित्र वृंदावन धाम मथुरा धाम जहाँ भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था मैं आया हूँ कुछ संदेशों को लेकर। विश्व में जहाँ जहाँ गया बड़े प्रेम से हमारे प्रवासी भारतीय जो कि भारत छोड़कर के बहुत दिनों से उन देशों में रह गए हैं वो प्रवासी भारतीय और वहाँ के लोगों ने विदेशी लोगों ने भी बड़े आदर के साथ में उसका श्रवण किया और उसे ग्रहण किया। आप लोगों ने भी सुना ये सौभाग्यवस्था मेरा जन्म गंगा के पावन तट पर हुआ जहां श्री रामचंद्र जी विश्वामित्र की यज्ञ की रक्षा के लिए आए थे वो रामचरित्र वन वहां पर अभी भी है राम रेखा घाट वहां है और वही पास ही में अहिल्या जी को भगवान रामचंद्र जी ने उद्धार किया था पास ही में नारद ऋषि का स्थान इसलिए हमारा सौभाग्य तो जरूर है कि वहां पर हमारा जन्म हुआ और बड़े सौभाग्य से अपने जगत विख्यात गुरु जी का संग मिला और जैसा कि आप लोगों ने सुना विदेशों में भारतीय वैदिक धर्म का ध्वजा उड़ाने वाले श्रीमत् दंडे स्वामी भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जिसको प्रभुपाद लोग कहते हैं 1946-47 से ही उनका हमारा संग प्राप्त हुआ। उन्होंने संन्यास मेरे आश्रम में ही लिया एक साथ में बहुत दिनों तक रहे उनकी सेवा करने का बहुत सुयोग मिला। यद्यपि हम दोनों ने एक ही गुरु से संन्यास लिया किंतु उम्र में ज्ञान में बहुत हमसे बड़े थे मैं उनको अपना शिक्षा गुरु पहले से ही मानता हूँ। उन्होंने अपने साथ मुझे लाने के लिए बहुत चेष्टा की प्रचार में किंतु उस समय मैं नहीं आ सका। उन्होंने अंतिम समय में हमको बुलाया और बोला कि हमारी जब शरीर छोड़ देंगे तो हमारी समाधि तुम अपने हाथों से देना। हमारे ऊपर में पूरा उनका विश्वास था। उन्होंने ये भी कहा कि हम जिन लोगों को भी ले आए हैं सनातन धर्म की ओर में, वैष्णव धर्म की ओर से, उनको आप सहायता करना, उनको शिक्षा देना। मैंने उनका आदेश सिर पर लिया। इसीलिए विश्व में जहां जहां उन्होंने प्रचार किया था, यहां पर उनका प्रचार शिथिल हो गया, लोग उसको समझ नहीं सके, उसका उल्टा अर्थ समझने लगे। इन लोगों ने उल्टा प्रचार भी करना आरंभ कर दिया, हमारे सनातन धर्म का अनादर भी करना आरंभ कर दिया। उनके पश्चात हमारे देवता देवियों और सनातन धर्म में जो जिस प्रकार से सबका आदर है, नहीं कर सके। इसलिए बहुत से लोग इनके विरोधी हो गए, बहुत से लोग इस कौन को छोड़ करके चले भी गए। बहुत से लोग हमारे साथ में जिन लोगों को देख रहे हैं उनसे उनकी श्रद्धा नष्ट हो गई और इसलिए हमारे साथ में आए, और उन लोगों ने हमको देश विदेश में बुलाना आरंभ किया। मैं समझता हूं यही कि स्वामी जी ने जो पौधे लगाए और मुरझा रहे थे, मैं उनको पानी सींचने के लिए, उन्हीं के उपदेशों के लिए भारतीय वैदिक सनातन धर्म की पानी उनमें सींचने के लिए शायद उन्होंने मुझे बुलाया, और मैं सर्वत्र जाता हूं। हमारा अपना कोई खास विचार नहीं है, हमारा तो विचार वही है जो सनातन धर्म का विचार है, जो वेदों के विचार हैं, उपनिषदों के विचार हैं, जो हमारे श्रीमद् भागवत गीता रामायण के विचार हैं, तुलसीदास जी का विचार है, हमारा वही विचार है। मैं तो एक तरह से वो डाकिया हूं, आप लोग शायद डाकिया समझते हो, उधर हैं कि नहीं, पोस्टमैन। मैं उनकी बातों को लेकर के आप तक पहुंचाने का यही काम करता हूं। मैं कोई साधक और सिद्ध और महापुरुष नहीं हूं, मैं बस एक छोटा सा तुच्छ व्यक्ति हूं। मेरे अंदर में वो सब कुछ गुण नहीं है, गुण यही है जो उन लोगों का संग किया, उन्हीं की वाणी आप तक लोगों को पहुंचाने का मैं ये कार्य करता हूं। मैं उन लोगों का नौकर हूं एक तरह से। मैं यहां पर सनातन धर्म की कुछ बातें कुछ देने के लिए आया। हमारे भारतवर्ष में जानता हूं कि हमारे यहां के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री और दूसरे लोग कथावाचक भी आते हैं देशों देशों में, कुछ पैसों के लिए आते हैं, किंतु हमारा उद्देश्य पैसे के लिए नहीं, इसके लिए नहीं आया। मैं तो इसलिए आया कि आप लोग हमारे अपने ही बंधु हैं, प्रवासी भारतीय हैं। बस आप लोगों को देख करके मेरा हृदय गदगद हो रहा है। बहुत दिनों के बाद में शायद हम आप लोगों से मिल रहे हैं। आप हमारे हैं, हम आपके हैं। सनातन धर्म बहुत व्यापक है, बहुत बड़ा भारी ये भारत का। पहले भारत कहते हैं किसे? भारत, भा माने होता है प्रकाश, ज्ञान, जहां पर ज्ञान का सदा प्रकाश है और उसमें वहां के लोग रत रहते हैं, इसलिए उसका नाम भारत है। यहीं पर हमारे आदि कवि वाल्मीकि जी का जन्म हुआ, यहीं पर हमारे वेदों के विभाग करने वाले सबके मूल उद्गाता शील वेद व्यास हैं, कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास हैं, वहीं पर सुखदेव गोस्वामी हुए, नारद गोस्वामी हुए, जिन्होंने विश्व में हमारे वैदिक ज्ञान का प्रकाश दिया। तो हम उसी देश से आ रहे हैं। हो सकता है कि बहुत दिनों से आप लोग देश से बिछोड़ करके सनातन धर्म के संबंध में कुछ भ्रामक बातें आ गई हूं आप लोग। बस मैं याद दिलाने के लिए आया, किंतु मुझे देख करके यहां पर सीताराम जी का मंदिर, शंकर जी का मंदिर देख करके मुझे बहुत खुश हुई। सात समुंदर पार, यहां में आप लोगों ने अभी तक अलख जगाई रखी है। अभी तक सीताराम, लक्ष्मण, राम पंचायत, हनुमान जी, शंकर जी इत्यादि की पूजाएं चल रही हैं। और आप लोग इन चीजों को अभी तक संजोए हैं यह देखकर के हमारा हृदय गदगद हो रहा है। मैं ये बतलाना चाहता हूं कि यथार्थ में सनातन धर्म है क्या चीज। यद्यपि सनातन धर्म के बहुत से स्तर हैं, उसका एम एंड ऑब्जेक्ट कोई है, उसका मूल उद्देश्य है, तो भी इसकी सीढ़ियां होती हैं। बहुत से लोग ऐसे कहते हैं अजी सनातन धर्म में तो बहुत से देवता देवियों की और बहुत से भगवानों की पूजा होती है, और हमारे यहां एक अल्लाह खुदा की पूजा होती है, हमारे यहां एक ही गॉड की पूजा होती है, दूसरों की पूजा नहीं होती। अनन्य ये लोग नहीं हो सकते, ये तो हजारों समाज में ये बटे हुए हैं, ये इतने देवताओं की पूजा क्यों करते हैं, ये समझ में नहीं आता। समझ में आना जरा कठिन है, जब तक कि हमारे हिंदू धर्म की, हमारे सनातन धर्म की बुनियादी बातों को लोग न समझ लें। हमारे यहां भी लाखों देवताओं और देवियों की उपासना नहीं है, एक ही की उपासना है, यही समझने का थोड़ा सा अंतर है। हम इसको आगे पीछे से, हम यहां पर 4-5 दिन रहेंगे, उसमें धीरे 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 इन विषयों को लेते हुए समझाएंगे। बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि संसार के किसी भी धर्म में भगवान का कोई रूप और मूर्ति पूजा नहीं है, केवल ये सनातन धर्म पत्थर की पूजा करते हैं, सोने का मूर्ति बनाते हैं, पत्थर की मूर्ति या पीतल की मूर्ति, और उसकी पूजा करते हैं, जिसको गजनवी ने कितनी बार, 11 बार ना 17 बार उनको मूर्तियों को तोड़ करके चौपट किया, उस मूर्ति में क्या रखा। किंतु ये लोग भूत पूजा करने वाले हैं सनातन धर्मी, इसका भी मैं उत्तर दूंगा। इसी तरह से कुछ लोग हम लोगों की आलोचना करते हैं, किंतु नहीं जानने की वजह से ये सब चीजें हैं, उनको बतलाने वाला भी बहुत कम व्यक्ति इस जगत में है। क्योंकि धर्म के जो गूढ़ तत्व हैं, गंभीर तत्व हैं, उस पर विचार नहीं करते हैं। मैं संक्षेप में, सुंदर रूप में, सहज बोध गम्य भाषा में इसको बतलाने की चेष्टा करूंगा। मैं समझता हूं कि मेरी हिंदी और आप लोगों की हिंदी में कुछ अंतर अधिक नहीं है, प्राय हिंदी की मेरी हिंदी आप लोग समझ सकते हैं। मैं तो देखता हूं कि हमसे भी अच्छी हिंदी ये सब बोल लेते हैं यहां के लोग। तो सनातन माने होता है ये, इसको समझने की चेष्टा करेंगे। और जो प्रश्न हमने उठाए हैं, और भी बहुत से प्रश्न हैं, पूजिए विप्र ज्ञान गुण ही ना। यदि विप्र है, ब्राह्मण है, तो उसको ज्ञान भी नहीं है तभी उसको पूजा करने के, तुलसीदास ने लिख दिया, ऐसा क्यों? और शूद्र में गुण भी न हो, शूद्र में गुण हो तो क्या, उसमें गुण भी हो तो उसकी पूजा न करो। ढोल गवार शूद्र पशुनारी, ये सब ताड़न के अधिकारी, ऐसा तुलसीदास जी ने क्यों लिख दिया? ये ढोल गवार शूद्र स्त्री को पीटने की जरूरत है, मैं तो नहीं सुनते हैं। और भी स्त्रियों को उन्होंने कुछ बुरी नजर से देखा है, यह गलत बात है, हम इसका भी समुचित उत्तर देंगे। और भी बहुत सी बातें हैं जो भी प्रश्न मुझे याद नहीं आ रहे, जो लोग उठाते हैं, उन सब प्रश्नों का मैं निराकरण करूंगा। तो मैं आरंभ कर रहा हूं सनातन धर्म। आप लोग यदि गंभीर रूप से यदि समझने की चेष्टा करेंगे तो समझेंगे, और चित्त इधर उधर नहीं रहेगा, व्यवस्थित नहीं रहेगा, तो समझने में असुविधा रहेगी। इसलिए जहां तक हो सके थोड़ा सा गंभीर रूप से समझने की चेष्टा करेंगे। बात खूब कठिन नहीं है, सहज ही है। सनातन माने होता है सदा तन, तन तनोति विस्तारेति, जो विस्तृत रहता है, सब समय है, भूतकाल में भी था, अभी भी है, भविष्य में जो रहेगा, जिसका कभी भी ध्वंस परिवर्तन नहीं है, वो सनातन है। सनातन एक तत्व होता है, जैसे श्रीमद् भागवत में बतलाया, बदंती तत्व तत्व विदस्तत्वम जग ज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानीति शब्दते। तत्वविद जो तत्वदर्शी हैं वो देख कहते हैं कि अद्वय ज्ञान परतत्व अखंड एक ज्ञान तत्व वही परतत्व है। उसको त्रिविध प्रकार के अधिकारी लोग कोई ब्रह्म कोई परमात्मा कोई भगवान के रूप में देखते हैं, किंतु है एक ही। तुलसीदास जी ने भी यही कहा कि ये जो सीतापति राम है वो अखंड सगुण निर्गुण समस्त शक्तियों के आधार वही रामचंद्र जी परतत्व हैं। भागवत गीता वेद पुराण उपनिषद में अलग अलग विचार नहीं, एक ही विचार है, केवल कहने की और शब्दों की शैली अलग है, किंतु एक ही चीज है। तो एक तत्व एक परतत्व ने जब अब उसको हम बहुत दूर से देखते हैं, जैसे हिमालय पहाड़ है, आप लोग तो देखा नहीं यहां का कोई पहाड़ खूब ऊंचा हो, तो बहुत दूर से देखते हैं तो काले मेघ का के समान वो उसको देखते हैं, ये काला सा मेघ है। जब निकट में जाते हैं कुछ निकट तो देखते हैं कि बहुत जंगल इसमें हुए, पेड़ पौधे और इसमें पत्थर है। और जब उसके अंदर में समाते हैं तो देखते कि यहां पर कैलाश पर्वत है, मानस सरोवर है, बद्री नारायण है, केदारनाथ है, बहुत सुंदर प्रकृति वहां पर है, पेड़ पौधे हैं, वहां पर नदियां हैं, झरने हैं, अपूर्व शोभा वहां की। उसी तरह से जब ब्रह्म को भगवान को बहुत दूर से देखा जाता है ज्ञान की उपासना से, तब उनको हम ब्रह्म कहते हैं। जब कुछ निकट आते हैं तो योग के द्वारा उन्हीं को परमात्मा कहते हैं, गीता में भी बतलाया गया है ऐसा। ब्रह्मणो प्रतिष्ठा, हम ब्रह्म की नहीं प्रतिष्ठा हूं, ब्रह्म हमारी एक प्रभा रश्मि है, शोभा है हमारी, अंगों की शोभा को ब्रह्म कहते हैं। और योगी लोग जो ध्यान में जिनका दर्शन करते हैं वो परमात्मा है जो सबके साक्षी है, ऐसा कोई जगत में नहीं है जिसके अंतर्यामी नहीं है। योगी लोग ध्यान योग के द्वारा उनका दर्शन करते हैं, उनमें भगवान का नाम रूप रूप भी दर्शन करते हैं अंगुष्ठ परिमाण में हृदय के बीच में। और जब भक्ति योग से उनको देखते हैं, भजन के द्वारा उनको जब देखते हैं तो उनको कैसे देखते हैं, भगवान के रूप में देखते हैं। अद्भुत रूप, अद्भुत उनके गुण, अनंत शक्तियां, अनंत परिकर, कभी सुंदर मुरली बजाते हैं, कभी धनुष बाण लेकर के जंगल में भी जाते हैं, उनकी शक्तियां हैं, सीता जी उनकी आदि शक्ति हैं, श्रीमती राधिका जी आदि की आदि शक्ति हैं, दुर्गा इत्यादि जी उनकी महामाया शक्ति हैं जो जगत का सृजन करने वाली हैं, ये सब देखते हैं। बिना भक्ति नेत्र के भगवान का दर्शन नहीं होता। एक ही चीज की तीन ये प्रतीतियां हैं, अलग अलग नहीं है ना? एक ही व्यक्ति जैसे किसी का बाप है, किसी का पति है, किसी का बेटा है तो एक, उसी तरह से बतलाया गया एते चांस कला पुंस कृष्ण तू भगवान स्वयं, एते चा अंश कला, ये हमारे अंश हैं, कोई कलाएं हैं, कृष्ण स्वयं भगवान है। थोड़ा सा ये विचार करके देखेंगे, यहां पर अंश कला कहा गया, ये अंश कला हमारी धारणा के रूप में नहीं, श्री रामचंद्र जी सूर्य वंश में आए तो सूर्य की कितनी कलाएं होती हैं, 12 कलाएं होती हैं, द्वादश, इसलिए द्वादश कलाओं में वो परपूर्ण है। और कृष्णचंद्र जी आए चंद्र वंश में, उनकी 16 कलाएं होती हैं, एकम दो तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी अष्टमी नवमी दसवीं एकादशी द्वादशी त्रयोदशी चतुर्दशी पंचमी पूर्णिमा पंचमी। तो ये चंद्र जो हैं, जो हम अलग अलग रूपों में देखते हैं, एक ही चंद्र को हम पृथ्वी के घूमने से, सूर्य के घूमने से, चंद्र की छाया पड़ने से, ये अलग अलग में चंद्र की छाया दिखती है, किंतु वो सब समय परिपूर्ण है। एंगल ऑफ विजन का एक केवल अंतर है, किंतु चंद्र एक ही चंद्र में ये सब दिखती हैं, इसलिए चंद्र अलग नहीं हो गया। ऐसे जो कृष्ण हैं, राम हैं, बराह देव हैं, कल्कि देव हैं, भगवान के जितने अवतार हैं, ये सभी भगवत तत्व हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं है। उपासना की दृष्टि से एक ही को हम इस रूप में देखते हैं, पूर्णम इदम पूर्णम अदः पूर्णात पूर्णम उदच्यते पूर्णस्य पूर्णम आदाय पूर्णमेव शिष्यते। सभी पूर्ण है, इन्हें संक्षेप में बतला रहा। अब इस चीज को समझने के बाद में ये समझिए कि तत्वतः एक होने पर भी एक परब्रह्म अथवा भगवान, वही कृष्ण राम इत्यादि हैं, और उनसे असंख्य कोटि जीव ये सब प्रकटित हुए हैं जो हम लोग हैं। जीव अनेक, जीव अनेक एक भगवंता, हम जीव अनेक हैं, और हमारे अंतर्ज्ञानी के रूप में हमारे हृदय में प्रभु सर्वत्र हैं, वो एक हैं, दो नहीं हैं। जीव हम अनंत हैं, इस अनंत जीवों को दो भागों में बांट दिया गया, जो वैकुंठ जगत में रह करके नित्य उनकी सेवा करते हैं वो नित्य मुक्त है, इस जगत में वो नहीं आते। आते हैं तो जगत के कल्याण के लिए आते हैं, भगवान के परिकर के रूप में, जैसे हनुमान जी इस जगत के व्यक्ति नहीं है, शंकर जी इस जगत के नहीं है, वो प्रभु के परिकर हैं, प्रभु के साथ में आते हैं और इस जगत में रह करके जगत का कल्याण करते हैं। दूसरे जीव हम लोग हैं जो भगवान को भूले हुए हैं, हम लोग जीव हैं। अब इन दोनों को, कड़ियों को जोड़ने वाली जो चीज है, जो उस ब्रह्म पर ब्रह्म भगवान को और इन जीवों को जो कड़ी जोड़ती है, जो भाव जोड़ता है, इसका नाम है सनातन धर्म। दो वस्तुओं को जोड़ने के लिए या तो मिट्टी का गिलावा होना चाहिए या सीमेंट का तरल कोई पदार्थ होना चाहिए जो वस्तुओं को जोड़ दे। इसलिए भक्ति योग कहा गया, जीव योग के द्वारा भगवान को जीव के साथ में जोड़ा जा सकता है, तभी उसका कल्याण। अभी थोड़ा सा हम लोग अलग हो गए हैं, वैकुंठ के जगत के जो जीव हैं वो जुड़े हुए हैं, उनको जोड़ने की कोई जरूरत नहीं, वो तो जुड़े हुए हैं भक्ति के द्वारा, उनकी सब समय नियत सेवा करते हैं। किंतु इस जगत में हम लोग जो उनको भूल करके संसार में रचे पचे हैं, इस शरीर को ही हमने, स्थूल शरीर को, पंच भौतिक शरीर को, क्षित जल पावक गगन समीरा पंच रसित यह अदम शरीरा, इसमें अभी ये कपड़े के अंदर में हम हैं, इसमें जीवात्माएं हैं, एक एक जीव एक एक शरीर में, और परमात्मा उसके साथ में साक्षी के रूप में है। हम अभी बद्ध जीव कहलाते हैं, अब बद्ध जीव को भगवान से जोड़ने के लिए जो अभी यहां पर साधन भजन किया जाता है वह सनातन धर्म की सीढ़ी है। पहले सनातन धर्म का पूर्ण चीज नहीं है, तो अभी उसको हम मान लेते हैं कि यह भी सनातन धर्म है। क्यों? सनातन धर्म तब होगा जबकि सनातन से सनातन का योग होगा, जब आत्मा के साथ में परमात्मा का जो योग है, जो कि वैकुंठ जगत में निज जुड़ा हुआ है, भगवान की सेवा करते हैं, वहां पर वह जो प्रेम है, वहां पर भक्ति नहीं कहा जाता, उसको प्रेम कहते हैं, उस प्रेम से उनकी सेवा करते हैं, ये सनातन धर्म है, वो प्रेम ही सनातन धर्म। इस प्रेम के द्वारा ही इस जगत में भी जब हम जोड़ते हैं परस्पर, प्रेम के द्वारा ही जोड़ते हैं। एक कुत्ता भी प्रेम से बुलाओ तू कुछ डुलाता हुआ चला आएगा, प्रीति न करो नहीं आएगा, पत्थर लेकर के मारो वो भागेगा। यदि पति और पत्नी में प्रेम नहीं है तो पति और पत्नी का संबंध बेकार है। माता और पुत्र में, पिता पुत्र में, ये परस्पर एक कड़ी है जो प्रेम कहलाता है, किंतु अभी वो प्रेम थोड़ा सा गड़बड़ होकर के मोह हो गया है, अभी वो प्रेम नहीं है। प्रेम में लेना देने का नहीं होता, प्रेम तो एकदम निस्वार्थ होता है। जीव से जीव का प्रेम नहीं होगा, जीव के साथ में मैत्री और प्रीति होगी। प्रेम और प्रीति में बहुत अंतर है, कुछ दिन संग रहने से तब ये समझ में आएगा। तो भगवान के प्रति प्रेम, जीवों के प्रति प्रीति होनी चाहिए। इस प्रीति को हम भूल गए हैं अभी। यही साधारण रूप में जब हम आरंभ करते हैं वो भी सनातन धर्म है। जैसे हम अभी राम या कृष्ण का शुद्ध रूप से प्रेम न करके, सेवा नहीं करके, अभी संसार में माता पिता भाई बंधु सबसे जुड़े हुए हैं, माता के प्रति पिता के प्रति आदर करना, श्रद्धा करना, ये सनातन धर्म का अंग है। पहले जो माता पिता की सेवा नहीं कर सकता वो क्या सनातन धर्म में प्रवेश करेगा? उस प्रेम को कैसे पाएगा? यहीं से शिक्षा करो, गुरु ट्रेनिंग यहीं से होगा। ये जगत उस जगत की छाया है, ये स्कूल एक तरह से सीखने के लिए है। माता पिता के प्रति पहले आदर करो, गुरुजन के प्रति आदर करना सीखो। पति और पत्नी में जैसे प्रेम रामचंद्र और सीता का जगता है, उससे भी अधिक कृष्ण और श्रीमती राधिका और गोपियों में देखा जाता है। वही प्रेम हमारा आदर्श है। इसलिए प्रारंभ करो नीचे से, सब में प्रीति रखी जाए। इसलिए गायों के प्रति आदर हो, ब्राह्मणों के प्रति जो इस तत्व को जानते हैं, जिनमें ये गुण है उनके प्रति आदर हो, देवताओं का भी यथा योग्य पूजन हो, इसको भी सनातन धर्म का अंग मान लिया गया। किंतु सनातन धर्म का पूर्ण प्रकाश ये नहीं है। इसलिए गीता में कहा गया, भागवत में, पुराण रामायण में यह बतलाया गया कि दो सनातन चीज है, ममई मानसो जीवलोके जीवभूत सनातन। एक सनातन क्या है? ये जीवात्मा। तुलसीदास जी भी कहते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। जीव कौन सा है? कहता है ईश्वर अंश, राम का अंश, भगवान का अंश, चेतन। चेतन माने अज्ञानता ज्ञान नहीं है, केवल ज्ञान ही ज्ञान है। हम लोगों में अज्ञानता है, आत्मा को देख नहीं पाते, किंतु जीवात्मा स्वरूपतः भगवान के तत्व को जानता है, माया के तत्व को जानता है। सबके प्रति उसकी प्रीति रहेगी मुक्त होने पर। अभी हम बद्ध हैं इसलिए नहीं समझ पाते हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, अविनाशी माने क्या? जिसका अविनाश न सनातन हो। यह बात ठीक नहीं है कि जीवात्मा परमात्मा में जाकर के लीन होकर के एक हो जाता है, यह हमारा सनातन धर्म नहीं है। जीव सनातन है, भगवान सनातन है, उनकी सेवा या भक्ति या प्रेम भी सनातन है, ये सनातन धर्म। कुछ लोगों का ये धारणा है, कुछ लोगों की, ये हम अभी साधन कर रहे हैं, साधन करते करते हम ब्रह्म में लीन होकर के ब्रह्म बन जाएंगे, हम ब्रह्मास्मि, गलत इसका अर्थ लेते हैं। भगवान ये कहते हैं कि मैं ब्रह्म हूं, तुम कैसे कह सकता? जो रोज रोज बिल जाते हैं, दुख में मरते हैं, दिन रात माया मोह में पड़े हैं, मरते हैं, जन्मते हैं कीड़े की भांति, वो ब्रह्म कैसे हो जाएगा? स्वरूपतम ब्रह्म के दास हैं, मुक्त होने पर माया दूर हो जाती है, उनकी सेवा को प्राप्त करते हैं, इसलिए ब्रह्म में मिलकर के एक हो जाएंगे। तत्त्वमसि, तुम भी वही हो, तो तुम भी और वही हो, ये कहने वाला कौन है और तुम कौन है और वह कौन है, ये अलग अलग क्यों? इसलिए यह सब बातें गलत है, ये सनातन धर्म नहीं, जीव ही सनातन है। और कहते हैं अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजौक साम जनमित्रम परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातन। ये सनातन ही है। इसे सनातन कौन हुआ? पर ब्रह्म। ब्रह्म कहने से एक ब्रह्म भी है और एक पर ब्रह्म है। जीव को कहीं कहीं ब्रह्म कहा गया किंतु पर ब्रह्म नहीं कहा गया, भगवान नहीं कहा जाएगा। इसलिए कहते हैं कि जीव जो है ये ब्रह्म, ब्रह्म इसको कहीं कहीं पर कह दिया गया। क्यों?
चेतन का है, कुछ भगवान का अंश है, चेतन है, अमल, जिसमें माया में क्या मल नहीं है स्वरूपता, और अविनाशी जिसका विनाश नहीं है। ब्रह्म मिल जाएगा तो उसका विनाश हो जाएगा, ऐसा नहीं। इसलिए ये दो चीजें हैं गीता में और शब्द में और स्पष्ट करके बतलाया गया, अव्यक्तोयम अदाह्योयम नित्य सर्वगत स्थानु अचलो अयम सनातन। इन्हें जीवों को भी सनातन कहा गया। ममई मानसो जीव लोके जीव हो तो सनातन, इसलिए जीव सनातन है, हम लोग सनातन है। अभी हम नहीं भूल गए हैं, अभी जन्म लेते हैं, वृद्ध हो जाते हैं, मर जाते हैं। आत्मा नहीं मरती, नैन छिदंती शास्त्राणी। आप लोग अर्जुन को कृष्ण ने कहा मूर्ख हो करके पंडित जैसा बात करता है, अस्वच्छान अस्वच्छ स्तन प्रज्ञावादंश भाष से गतासु न गतासु न शोचंत पंडित। अरे पंडित व्यक्ति जो चला गया है, शरीर इसके लिए नहीं होते और जो चला जाने वाला है उसके लिए नहीं होते। आत्मा अजर अमर नित्य शाश्वत है, जीवात्मा हम लोग नित्य हैं। इसलिए दो बातें हैं, एक सनातन है पर ब्रह्म, वही राम या कृष्ण समझिए, और दूसरे सनातन हम जीव हैं। इनको जिस कड़ी के द्वारा जोड़ा जाता है, प्रेम के द्वारा जोड़ा जाता है, इस प्रेम को इस जगत में भक्ति कहते हैं, या भक्ति योग ही हमारा सनातन धर्म है। इसलिए बतलाया गया श्रीमद् भागवत में, क्या बतलाया, सवाई पुंसान परो धर्मो जतो भक्ति रधोक्खजे। अधोक्षर मैंने जो कि प्राकृत, जिनका शरीर नहीं, हमारा ये प्राकृत शरीर है, जिनका प्राकृत शरीर नहीं है, राम और कृष्ण का शरीर सच्चिदानंदमय है, नित्य काल रहने वाला, वो आग नहीं स्पर्श कर सकती, आग से नहीं जलेगा उनका शरीर। जीवात्मा का जो हमारे अंदर में शरीर, उसको आग नहीं छू सकती। नैनम छिदंती शास्त्राणी, अस्त्र शस्त्रों से काटा नहीं जा सकता है। इसलिए भगवान का प्यारे क्या तुम मूर्ख कहता है, ये हम इनको मार डालेंगे, जीवात्मा अजर अमर है, उसको तुम कुछ नहीं कर सकता, और ये शरीर तुम मरा हुआ है, इसका क्या तुम मारोगे, इसको हमने पहले ही से मार रखा, ये तो जड़ वस्तु है। इसलिए यहां पर कहते हैं कि जिस साधन के द्वारा प्रारंभ से भगवान से हम जुड़ते हैं, उसका नाम सनातन धर्म या भक्ति योग है। पहले इसका नाम होता है, पहले जब आरंभ करते हैं, जब शरीर से ये क्रियाएं होती हैं, तब इसको साधन भक्ति कहते हैं। प्रारंभ में जैसे कि हमने बतलाया था कि कॉलेज में या स्कूल में बहुत से क्लास होते हैं, जिस देश में या जिस स्कूल में केवल एक ही क्लास हो, बच्चे नहीं पढ़ सकते। प्रारंभ से लेकर के ग्रेजुएशन तक, डीलिट इत्यादि तक विविध प्रकार की कक्षाएं होती हैं। यदि एक ही क्लास रख दिया जाता है, एक ही टीचर रख दिया जाता, उनमें ज्ञान का विकास नहीं होता। इसलिए विदेशों में जो जितने भी धर्म हैं, उनमें ज्ञान का विकास नहीं होता, बस लड़ो मारो काटो, बस इसी को धर्म समझ लेते हैं। ये काफिर है, और ये मैंने क्या मुस्लिम लोग कहते हैं, ये काफिर है जो खुदा खुदा नहीं करता या उनके धर्म में नहीं चलता, उसको काफिर समझते हैं। हमारे यहां है, सनातन धर्म यह नहीं है। बहुत तरह के क्लास हैं, कोई राजसिक व्यक्ति है, कोई तामसिक व्यक्ति है, कोई सात्विक व्यक्ति है, कोई इससे भी निर्गुण व्यक्ति है। इसलिए प्रारंभिक अवस्था में देवी देवताओं की पूजा आवश्यक है, नहीं तो नास्तिक बन जाएगा। ये देवी देवता हैं कौन, ये भगवान की शक्तियां हैं जो जगत के लिए उन्होंने अपनी शक्ति देकर के संचालित करके जगत की रक्षा के लिए उन्होंने किया है। गणेश जी को रखा है बाघ शक्ति के अधि देवता, सरस्वती को रखा है उसी तरह से धनदात्री के रूप में रखा, दुर्गा जी का दुर्ग संसार से दुर्ग की रक्षा करने के लिए दुर्गायत्री हैं, इसलिए अपनी उनमें शक्ति आती है। इसमें देखिए किंतु एक बात है, रावण ने घड़ी नहीं रखा, रावण शंकर जी की पूजा करता था, 200 शरीर अकला काट करके और हवन कर दिया ना शंकर जी के लिए, किंतु हुआ क्या,
हुआ क्या, राम का द्रोही बन गया, राम जी के सीता जी को हर लिया और 1,00,000 पुत्र 1,25,000 नाती सभी ध्वंस हो गए। कंस जरासंध ये शंकर जी की उपासना करते थे, भस्मासुर शंकर जी की उपासना करते थे किंतु भगवान से द्रोह किया तो उनकी गति क्या थी, ऐसे तरह से हुए। इसलिए शंकर जी की उपासना देवताओं की उपासना करना चाहिए एक तरीका है, उनको गुरु के रूप में मानो, उनमें जो गुण है उनके गुणों के अनुसार में उनकी पूजा करो। पर ब्रह्म शंकर जी के भी आराध्य जो राम है ना, उनको लो। इसको बतलाने के लिए मैं संक्षेप में एक इतिहास का वर्णन करूंगा, अभी संक्षेप एक कीर्तन सुंदर सा कर दो। मैं अपने प्रसंग पर आ रहा हूं, इसमें बहुत तरह की शिक्षाएं हैं उस उपाख्यान। पहली शिक्षा तो इसमें यह है, बिनु गुरु भवनिधि तरै न कोई, ज्यों बिरिंच संकर्षम होई। ब्रह्मा और शंकर जैसे भी तत्व ज्ञानी कोई हो, ब्रह्मा और शंकर के लिए नहीं कहा गया, वो तो है ही है, उनके लिए नहीं, उनके समान भी कोई तत्व ज्ञानी हो, बिना परमार्थिक गुरु के हम सनातन धर्म के गूढ़ रहस्यों को नहीं समझ सकते और हम जीवन में सुखी नहीं हो सकते। इसलिए लौकिक गुरु रहने पर भी परमार्थिक एक गुरु का होना अवश्यंभावी है। जो समस्त शास्त्रों के तात्पर्य को समझने वाले हों, जो परब्रह्म की अनुभूति रखने वाले हों और संसार के मोह माया से दूर हों, ऐसे कोई गुरु सदगुरु मिले तो लौकिक गुरु को सम्मान करते हुए यदि योग्य हैं तो ठीक है, सम्मान करते हुए परमार्थी गुरु करना चाहिए, बिना इसके ज्ञान नहीं हो सकता। इसलिए जितने भी आज तक भगवान को मिले हैं, जैसे अजामिल कैसा दुराचारी व्यक्ति, किंतु देखो वो कैसे भगवान को प्राप्त हो गया, किस प्रकार से हनुमान जैसे लोग, सुग्रीव जैसे लोग, बंदर भालू, भालू कौन यामवंत जी, कैसे कैसे लोग भगवान को प्राप्त हो गए संघ के प्रभाव से, गुरु के प्रभाव से। ये हमारे वाल्मीकि जी इतने दुराचारी थे, लोगों को मारने वाले थे, डकैतों के सरदार थे, कि जिनके संग्रह के वे जनेऊ से कितने कुएं भर गए थे, कितने लोगों को मारा, जो कि राम राम उच्चारण नहीं कर सकते थे, किंतु नारद जी की ऐसी कृपा हुई उनकी गुरु की, उल्टा नाम जपत जग जाना, बाल्मीक भय ब्रह्म समाना, ब्रह्म समान हो गए। इसलिए परमार्थिक गुरु की आवश्यकता है। ऐसा परमार्थिक गुरु मिलने पर यदि उसको हम बात नहीं मानते, अवज्ञा करते हैं, उनसे झूठ बोलते हैं, तो कुछ गड़बड़ी हो जाएगी। अब इसको चलिए तुलसीदास जी कहते हैं, एक समय शंकर जी कैलाश से अगस्त जी से मिलने के लिए दक्षिण भारत में गए, साथ में सती जी थी, उमा जी नहीं, अभी उमा जी का जन्म ही नहीं है, उससे बहुत करोड़ों वर्ष पहले, लेकर के वहां पर गए। अगस्त ऋषि के आश्रम में राम की बहुत सी कथाएं परस्पर होती रही, कभी राम सुनते कभी अगस्त जी सुनते परस्पर। कुछ दिन बीत गए, शंकर जी ने कहा अब आदेश करें, अब मैं चलूं अपने कैलाश को, तो लौट रहे थे। इतने में रामचंद्र जी त्रेता युग में अवतरित हो चुके थे और अपने पिताजी का वचन पालन करने के लिए वो दंडकारण्य में लक्ष्मण जी के साथ और सती उनके साथ में सीता जी के साथ में आए थे, और वहीं पर रामचंद्र जी की सीता जी को रावण ने हरण कर लिया। रामचंद्र जी उस समय में विलाप करके पेड़ों से पूछ रहे हैं, हमारी प्यारी सीता जी को देखा? हिरणों को गले से लगा करके पूछते हैं, तुमने अपने प्रिय सीता जी को देखा?
रो रहे हैं।
ऐसे मालूम होता है जैसे बस मुंह में अंधे हो गए हैं। लक्ष्मण जी चुपचाप उनके पीछे चल रहे हैं, बड़े उदास और खिन्न होकर के। शंकर जी इसी समय में दंडकारण्य में पहुंचे, रामचंद्र जी को देखते ही उनके गदगद शरीर हो गए, पुलक से शरीर भर गया, आनंद से परिप्लुत हो गए और उनको वहीं से साष्टांग प्रणाम किया और बहुत दूर से घूम करके परिक्रमा की। उनको छेड़ा नहीं जिनके लीला में विघ्न हो जाएगी और उनको आप ही सच्चिदानंद स्वयं भगवान हैं, कैसी अद्भुत आप लीला कर रहे हैं। और उन्होंने मन ही मन में उनको प्रणाम करके साष्टांग प्रणाम करके और लौटे। सती जी ने देखा, सती जी ने विचार किया मन ही मन में, एक जो निर्गुण ब्रह्म है, निराकार ब्रह्म है, जो प्रकृति से अतीत है, व्यापक है सर्वत्र, वो कैसे मनुष्य शरीर धारण करके जगत में आएंगे, तो व्यापक कैसे रह जाए? इसलिए एक एक शरीर में व्यापक होने वाले ये राम नहीं हो सकता। इसको तो मैं जानता हूं महाराज दशरथ का पुत्र है ये, और स्त्री के वियोग में खिन्न होकर के इसको ये भी पता नहीं कि मेरी सीता जी को कौन ले गया, कैसे ले गया, क्या ले गया, और विलाप कर रहा है, ये कदापि ब्रह्म नहीं हो सकता है। और जो विष्णु शरीर लेकर के धारण करते हैं वो तो शंकर के समान सर्वथा सर्व अंतर्यामी होते हैं, सब कुछ जानने वाले होते हैं, तो विष्णु को भी तो मोह नहीं हो सकता, तो इसलिए ये परब्रह्म नहीं है, नहीं तो वो रूप कैसे धारण करेंगे। कुछ लोग ये समझते हैं कि भगवान का रूप स्वीकार करने से वो अंतर्यामी नहीं रह जाएंगे, घट घट निवास नहीं कर सकते हैं, व्यापक नहीं हो सकते हैं सब जगह, तो फिर शरीर धारण करेंगे तो उनको जन्म मरण का दुख सहना पड़ेगा, इसलिए वो कभी भी शरीर धारण नहीं कर सकते। किंतु यह बात गलत है, भगवान का सच्चिदानंद रूप है, सत मने उनका शरीर है, चित मने उनका ज्ञान और उनके अंदर में प्रेम है, लागनी शक्ति उनमें अंदर में है, इसलिए आनंद स्वरूप है। वो अपनी शक्ति के द्वारा दूसरों को भी आनंद देते हैं, इसलिए उनका सच्चिदानंद शरीर है, हम उनको देख नहीं पाते। हमारा भी एक सच्चिदानंद शरीर है क्योंकि हम लोग उनके अंश हैं। अभी यह ढका हुआ है ये माया के वजह से, ये शरीर के द्वारा, इसलिए उनका शरीर है। इसको सभी धर्म वाले मानते हैं किंतु मुख से भले ही न माने। जैसे बाइबल में यह लिखा गया, गॉड क्रिएटेड मैन आफ्टर हिज ओन इमेज, यदि उनका खुद ही रूप नहीं है, इमेज नहीं है ब्रह्म का, गॉड का, गॉड कौन, जी ओ डी, जी जनरेटर, ओ ऑपरेटर और डी डिस्ट्रॉयर, उसी को ब्रह्म कहते हैं, हमारे यहां भी उसी को कहते हैं। तो वो जो ऐसा है उसका रूप वो लोग नहीं मानते, चक्र में उनका रूप नहीं रखते, किंतु देखो उनके खुद बाइबल में लिखा, गॉड क्रिएटेड मैन आफ्टर हिज ओन इमेज। यदि उनको खुद ही रूप नहीं है तो ये रूप कहां से दे सकते थे, इसलिए अपने रूप के अनुसार में उन्होंने पैदा किया मनुष्य को। दूसरी बात, हमारे कृष्ण का नाम कृष्ण है, हमारे उड़ीसा में उनको कृष्ण कहते हैं, कोई भी बात नहीं, एक ही है, और उसको लैटिन भाषा में क्रिस्टस कहा गया है, क्रिस्टस उनको कहा गया, और वो क्रिस्टस से हो गए क्राइस्ट, और ये क्राइस्ट हुए कौन है, हैं कौन, ये कृष्ण है, इसलिए क्राइस्ट के बेटे जेसस हैं। तो किसके बेटे हुए, कृष्ण के हुए ना, इसलिए सब जुड़े हुए हैं, लोग समझते नहीं इन चीजों को, नहीं तो फिर कृष्ण के बेटे कैसे होते, वो क्राइस्ट, क्राइस्ट के बेटे ये कैसे होते, इसलिए जब बेटे हैं तो बेटे का रूप बाप के समान होता है,
बेटा का यदि बेटा यदि है मनुष्य का शरीर तो उसका बाप बाघ भालू हो जाएगा न सर्प होगा आखिर निराकार ब्रह्म हो जाएगा हैं? तो बेटा तो वैसा ही हो जैसा बाप है बाप को रूप ही नहीं बाप बाप है सुअर तो बेटा हो जाएगा मनुष्य ऐसा नहीं होता इसलिए उनका बेटा यदि जेसस है मनुष्य तो उसका बाप जो कृष्ण है उसका रूप नहीं होगा क्राइस्ट का इसलिए कृष्ण का रूप कैसा रूप है कस्तूरी तिलकम ललाट पटले बस्तक चले कौस्तुभम साग्रे बरमौक्तिकम करतले वेणु करे कंकणम सर्वंगे हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावली गोपी स्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ा देखो तो कैसे सुंदर ये सब चीजें हैं